پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu اور ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے voaurdu.com. تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. ہر دم رواں ہے زندگی میں گزشتہ تقریباً 7 سال سے ہر ہفتے ہم کسی ایسے پاکستانی کی کہانی آپ تک پہنچاتے ہیں جس نے امریکہ آ کر نہ صرف اپنے اور اپنے خاندان کے روشن مستقبل کی راہ ہموار کی, امریکہ کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچایا, بلکہ اپنے آبائی وطن پاکستان کا قرض چکانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا. ہر دم رواں ہے زندگی میں آج سچے جذبوں اور ہمت کی ایک اور کہانی ہم شامل کر رہے ہیں, ایک ایسے خاندان کی کہانی جس نے اپنی بچی کو درپیش مڑے ہوئے پیروں کے کلب فٹ نامی ایک پیدائشی نقص کا ایک مہنگا مگر کامیاب علاج امریکہ میں کرانے کے بعد پاکستان میں موجود ان ہزاروں غریب بچوں کو اس نقص سے آزاد کرانے کا مشن شروع کیا پہلا قدم کے نام سے. 2011 میں شروع کیا گیا ان کا یہ مشن اس وقت کس مرحلے میں ہے, ان کے اس مشن کو شروع کرنے اور آگے بڑھانے میں کراچی کا انڈس ہسپتال کس طرح مددگار ثابت ہوا, اور امریکہ میں موجود ان کے دوست عزیز اور درد مند دل رکھنے والے پاکستانی امریکی کس طرح ان کے ساتھ اور ان کے اس عزم میں شامل ہوئے کہ وہ مل کر پاکستان بھر کو 2020 تک ایک کلب فٹ فری ملک بنا دیں گے, یعنی ایک ایسا ملک جہاں کوئی بچہ مڑے ہوئے پیروں کے ساتھ بڑا نہ ہو. یہ کہانی آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پہلا قدم کے کو فاؤنڈرز عامر حیدر اور ان کی اہلیہ منیرہ شمیم کو, جو کیلیفورنیا سے ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پر. ہمارے مہمان ہیں انڈس ہسپتال کراچی کے ٹراما اور آرتھوپیڈک شعبے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد امین چنائے, جو کراچی سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ ہیں انڈس ہیلتھ نیٹورک کے سینٹر فار اسینشل سرجیکل اینڈ ایکیوٹ کیئر کی پروگرام ڈائریکٹر اور ایک پیڈیاٹرک سرجن ڈاکٹر لبنا سمد, جو اس پہلا قدم کے ساتھ ہر مرحلے پر ان کے ساتھ موجود رہیں, اور انڈس ہسپتال کے تحت چلنے والے لاہور کے منوا ہسپتال کے آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر محمد ذیشان اسلم بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے, جو پہلا قدم پروجیکٹ کو اس ہسپتال میں چلا رہے ہیں. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہم شامل کریں گے پروگرام میں سب سے پہلے عامر حیدر اور ان کی اہلیہ منیرہ شمیم کو, جو اس پہلا قدم کے فاؤنڈرز ہیں. السلام علیکم عامر حیدر اور منیرہ شمیم صاحبہ.
السلام علیکم.
بہت شکریہ, بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. سلام آپ کے جذبے کو جس نے پاکستان کے ہزاروں غریب بچوں کو معذوری کی زندگی گزارنے سے بچایا. عامر حیدر صاحب, سنائیے اس جذبے کی کہانی جس کے تحت آپ نے پاکستان بھر سے مڑے ہوئے پیروں کے ساتھ جنم لینے والے بچوں کو اس نقص سے آزاد کرانے کا مشن شروع کیا تھا. کیسے شروع ہوا یہ مشن اور اس وقت کس مرحلے میں ہے یہ مشن, اور آپ کی وہ بچی اب کتنی بڑی ہو چکی ہے جو پاکستان بھر کے ہزاروں بچوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی وجہ بنی؟
جی بہت شکریہ, آپ نے انٹرویو کیا پہلا قدم کے پروجیکٹ کو, بہت خوشی ہوئی. تو جیسا آپ نے بتایا, میرا نام عامر حیدر ہے اور ہماری بیٹی ہے مہر, ہماری پہلی بیٹی منیرہ میری, اس کی پیدائش تھی 2006 میں, اور اس وقت جب وہ پیدا ہوئی, اسی وقت جب ہم نے دیکھا پہلی دفعہ بیٹی کو, تو جو ہے اس کے پاؤں ہمیں مڑے ہوئے نظر آئے, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. تو اس کے بعد ہم نے پوچھا ڈاکٹر سے کہ یہ کیا ہے, انہوں نے کہا رکیے ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے آپ کو آ کے بتائیں گے, اور پھر انہوں نے 15-20 منٹ بعد آ کے بتایا کہ بھائی یہ ایک اس کو جینیٹک کنڈیشن ہے, اس کا نام ہے کلب فٹ. اور یہ اس وقت جب انہوں نے یہ بات بتائی مجھے, تو آف کورس جیسی کوئی بھی پیرنٹ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کے لیے بہتری چاہتا ہے, تو بہت ہٹ کیا. مگر اس وقت مجھے ذہن میں ایک اور بات یاد آئی کہ جب میں اسکول میں ہوتا تھا پاکستان میں, ہیپی ہوم اسکول میں تھا میں کچھ دنوں کے لیے کراچی میں, تو ادھر ہمارے کلاس میں ایک لڑکی ہوتی تھی اور اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے, اور مجھے فوراً وہ یاد آیا کہ وہ لڑکی جو تھی آف کورس اسکول میں تھی مگر ڈسیبل تھی, اور ہم کھیل نہیں سکتی تھی, اور اس کی زندگی جو تھی آف کورس ریسٹرکٹیڈ سے تھی. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب یہ کیسے ہوگا میری मेरी बेटी का हम इसको किस तरह से इलाज करेंगे. तो ये बातें सारी एकदम से मेरे जहन में आई. मगर जैसे ये बातें आ रही थी उसके फौरन बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका फिक्र ना करें, ये बहुत आसानी से इलाज हो जाएगा.
अच्छा.
तो एकदम से मैं खुशी हुई. मेरे कहा ये कैसे, अरे ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने. तो उन्होंने कुछ बताया हमें कि इसका तरीका है पॉन्सेटी मेथड होता है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. तो हमने जाके इंटरनेट पे देखा और हमें समझ में आया कि किस तरीके से ये काम होगा. मगर फिर मेरे जहन में यही बात इस वक्त ये बात रह गई कि भाई चलो अल्लाह का शुक्र है हमारी बेटी तो ठीक हो जाएगी और बिल्कुल कोई मसला नहीं है उसको, ठीक है ना. वो भाग रही हैं, जिमनास्टिक्स भी कर रही हैं, स्विमिंग भी कर रही हैं. लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो मेरी क्लास वालों थी और जैसे हजारों बच्चे हैं, तो उसके वजह से वो बस बात जहन में रह गई. और उसका उसके किस तरीके से इलाज हुआ, हमारा क्या एक्सपीरियंस हुआ, मैं मनीरा से पूछना चाहूंगा कि वो जरा बताएं.
चलिए जी,
मैं बताऊंगा कि ये कैसे इन दिस हॉस्पिटल से कैसा रहा हुआ हमारा.
बहुत शुक्रिया आमिर हैदर साहब. और जिंदगी के हर कदम पर आप अपनी अहलिया को अपने साथ रख रहे हैं और इस मिशन में भी आपने अपनी अहलिया को साथ रखा और अपने गुफ्तगू में भी आपने उतना ही बोला जितना आपको हक हासिल था. और आपने माइक्रोफोन हवाले कर दिया मुनीरा शमीम के. तो मुनीरा साहबा, आप एक मसरूफ़ वकील हैं और अपनी घरेलू ज़िंदगी को भी बड़ी अच्छे तरीके से गुजार रही हैं, अपने घर को भी चला रही हैं और साथ साथ आप अपने शौहर आमिर हैदर के मिशन में भी शामिल हैं और जो ज़ाहिर है आपकी बेटी का भी एक मिशन था. तो कुछ बताइए कहानी आगे से जहाँ से आमिर हैदर साहब ने छोड़ी है.
आमिर हैदर साहब ने कहानी वहाँ पे छोड़ी कि इंटर्स हॉस्पिटल से कैसे रابطہ हुआ. बात दरअसल ये है कि हम कैलिफोर्निया में रहते हैं मगर हमारा दिल पाकिस्तान के साथ हमेशा वाबस्ता है. अपने मैं कराची में पैदा हुई और कराची में बड़ी हुई और हालांकि इस वक्त मैंने अपनी आधी जिंदगी अमेरिका में गुजारी है मगर जाहिर बात है हम जहाँ से आए हैं वहाँ की खून, मिट्टी, पानी सब हमारा हिस्सा है. तो जब हम यहाँ पे जो भी सहूलत इंजॉय करते हैं साथ साथ ये ध्यान रहता है कि जो लोग हम वहीं से हैं जहाँ पे हजारों लाखों लोग ये सहूलत इस सहूलत से फायदा नहीं उठा सकते. ये हमारा पे फॉरवर्ड करने का टाइम था कि हम कैसे अपने वतन तक वो सहूलियात, वो मेडिकल इलाज पहुँचा सकें जिससे हम यहाँ कैलिफोर्निया में रहते हुए मुस्तफीद हुए. इन दिस हॉस्पिटल से हमने रابطہ किया. हमारे चंद बहुत अच्छे दोस्त जानने वाले वहाँ पे हैं. डॉक्टर लुबना समद से पहली दफ़ा ताल्लुक कायम हुआ, फिर उन्होंने हमें वहाँ की ऑर्थोपेडिक टीम से मुलाकात करवाई. साथ में हमने आयोवा में यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में पॉन्सेटी इंटरनेशनल क्लिनिक मौजूद है जहाँ पे डॉक्टर पॉन्सेटी ने जो तरीका ईजाद किया क्लब फुट को ट्रीट करने का, हमने इंडस हॉस्पिटल और पॉन्सेटी इंटरनेशनल का आपस में ताल्लुक करवाया ताकि पाकिस्तान में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिसकी डिटेल आपको इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबान अभी बताएंगे, हमने उनको आयोवा में आयोवा वालों से ताल्लुक इस्टेब्लिश कराया और फिर ट्रेनिंग के लिए इंट्रोडक्शन कराए. और फिर उसके बाद इंडस हॉस्पिटल में पहली दफा पहला कदम के क्लिनिक के नाम से क्लब फुट का इलाज शुरू हुआ.
अच्छा, तो उसमें आपने उसके लिए फंड्स वगैरह आपने फिर यहाँ अमेरिका से इकट्ठे किए.
उसके लिए फंड्स ये हमारे साथ और बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं जिनके दिल में वही दर्द है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था. तो फंड रेजिंग की मुहिम हमने कैलिफोर्निया से शुरू की मगर क्योंकि हमारे यहाँ पे आमिर के वालदेन साथ रहते हैं जो बहुत अरसे से रहते हैं, आमिर के भाई जो हैं वो ईस्ट कोस्ट पे रहते हैं, हमारे बहुत सारे जाने वाले हैं हर तरफ. तो और आजकल जो है वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया के थ्रू फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा आसान रही है, अल्लाह का शुक्र है. रमज़ान के दिनों में लोगों के दिल, लोगों के हाथ बहुत आराम से खुल जाते हैं. दूसरा ये कि क्लब फुट का इलाज रियली पब्लिक हेल्थ इश्यू है. इलाज इतना महंगा नहीं है जितना कि लोगों के लिए अवेयरनेस रेज करना वो बड़ा ज्यादा इश्यू है. तो अब हम अगर कहते हैं कि अगर आपकी आपके थोड़े से चंद सौ डॉलर देने की वजह से आप एक बच्चे की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, उसके लिए तालीम, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट और दूसरे मौके फराहम कर सकते हैं, तो ये बहुत छोटा सा और बहुत स्पेशल और टारगेटेड मैसेज है जो लोगों तक बहुत आराम से पहुंच जाता है और फिर लोगों के दिल और लोगों के वॉलेट बहुत आराम से खुल जाते हैं इस मैसेज के साथ।
अच्छा, तो आप तक आप इतने वर्षों में कितने फंड्स मुहैया कर चुके हैं इस पहला कदम के प्लेटफॉर्म से इंडस अस्पताल को?
इसमें आमिर मुझे ज्यादा मदद करेंगे। आमिर आप बताइए कि हमने हर साल अमेरिका से कितने फंड जो हैं पहला कदम की मदद के लिए भेजे हैं?
जी आमिर हैदर साहब।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फंड रेजिंग में ये दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो ऑनलाइन है और फिर एक जो है वो जो मेहनत का काम है वो ये है कि आप इंडस हॉस्पिटल जाएं, जाके देखें, वहां से लोगों से बात करें और फिर आके यहाँ लोगों के साथ नेटवर्किंग करें और उनको बताएं। तो इस काम के लिए जो सबसे ज्यादा मेहनत की है वो मेरी वालदा साहब है, उनका नाम है आयशा हैदर। वो भी शायद लाइन पर है। आयशा हैदर
हमारे साथ लाइन पर हैं। जी आयशा हैदर साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा हैदर साहब हमारे साथ हैं।
जी जी बिल्कुल है,
लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हमारी बात नहीं सुन रही। तो आप ओवरऑल बताइए, ओवरऑल बताइए कि कितने बच्चों के लिए आप कितने फंड्स यहाँ इकट्ठे कर चुके हैं, एग्जैक्ट नहीं ऐसी?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ओवर 1000 बच्चों के लिए तो हम फंड जमा कर चुके हैं, मगर इसमें भी दो हिस्से हैं। एक ये है कि जो पहला कदम क्लिनिक है जिन बच्चों को डायरेक्टली फ्री का इलाज इंडेक्स के थ्रू दिया जा रहा है, तो हम इसके लिए भी फंड जमा करते हैं। और फिर इस तरीके से और भी फंड जमा होते हैं जो दूसरे जो ट्रेनिंग के लिए होते हैं, और वो जो है वो फंड रेजिंग USAID से भी जमा हुई हुई और दूसरे और इंडस हॉस्पिटल खुद उसको फंड करता है कि लोगों की ट्रेनिंग किया जाए।
अच्छा।
तो मगर हमारे लिए हम ये कर रहे हैं कि USA में हम लोगों को बताते हैं कि देखें जी पाकिस्तान में जिन बच्चों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए हमें फंड रेजिंग करनी है, और हमने उनके लिए ये जो ट्रीटमेंट है ये फ्री प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ फंड रेज करते हैं। और पिछले साल हमने $1,00,000 जमा किए और उससे पहले सालों में हमने तकरीबन 50,000 से 60,000 डॉलर जमा किए, मगर इस साल ज्यादा जमा किए और इंशाल्लाह आगे जाते हुए हमें इस चीज को कंप्लीट करने के लिए हमें $1,00,000 से $1.5 लाख चाहिए होगा, ताकि हम हर जो बच्चा आए पहला कदम की क्लिनिक में उसको फ्री इलाज दिया जाए।
ठीक, तो बेहद शुक्रिया मोहम्मद आमिर हैदर साहब और मुनीरा शमीम साहबा, आपकी वालदा आयशा हैदर हमारे साथ, हमें नहीं मालूम कि टेलीफोन मौजूद हैं या उनकी आवाज़ सही नहीं आ रही, तो लेकिन हम उनको अपने साथ रखते हैं, जो ही हमारा उनसे टेलीफोन लाइन सही हुई तो हम उनसे भी बात करेंगे। और इस वक्त हम चाहेंगे कि हम गुफ्तगू में को आगे बढ़ाएं और शामिल करें इंडस अस्पताल कराची के ट्रॉमा और ऑर्थोपेडिक शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन चुनावी को, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर कराची से मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन चुनावी साहब। डॉक्टर चुनावी साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का, और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे डॉक्टर अमीन चुनावी ने वक्त निकाला है हमारे इस प्रोग्राम के लिए, और हम इनके बहुत शुक्रगुजारी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर अमीन चुनावी साहब, हम आपसे ये पूछें कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है और इस पर कैसे कितनी लागत आती है एक बच्चे के टेढ़े पाँवों को दुरुस्त करने में, आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि ये जो क्लब फुट या टेढ़े पैरों का जो नक्श है ये क्या होता है, कैसे पैदा होता है, पाकिस्तान में इसकी शरह क्या है, इसकी क्या वजूहत होती हैं और क्या इस मर्ज को पैदा होने से रोका जा सकता है? जी डॉक्टर चुनावी साहब।
जी देखिए, इसमें ये मर्ज दुनिया भर में बहुत कॉमन है, तकरीबन कहा जाता है कि हर 1000 में एक बच्चा होगा जिसको ये होगा।
दुनिया भर में
1000 बच्चे पैदा होते हैं दुनिया भर में, ये 1-2% या 1.5% का रेशो है, किसी मुल्क में 0.5% से लेके 2% तक वेरी करता है, कहीं किसी मुल्क में 0.5% है, किसी में 1 है। पाकिस्तान में जो हमारे एस्टिमेट है, जो हम पिछले साल से काम कर रहे हैं, हमारा एस्टिमेट ये है कि तकरीबन एक बच्चा 1000 लाइव बर्थ जो होती है उसमें से एक बच्चे को फ्लप होता है।
अच्छा, तो हर
होता है,
क्यों होता है जी?
इसमें देखें बात होती है कि क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसके हमारे यहाँ बहुत तोहम परस्ती है कि जी और निकाल जाता है, जो चांद गिरन से या सूरज गिरन से होता है या سکتا ہے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ جس فیملی میں ایک بچہ ہوتا ہے اس میں دوسرے بچے کو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں.
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا یعنی یہ موروثی بھی ہو سکتا ہے یہ مرض.
جی یہ ہو سکتا ہے موروثی, اور ابھی کچھ کام ہو رہا ہے جینیٹکس پہ, کچھ جینز آئیڈینٹیفائی بھی ہوئی ہیں ایک دو کہ جو اگر یہ کسی فیملی میں یہ جین ہے تو شاید ان کی فیملی میں یہ بچے کوئی ایک بچہ یا کوئی اگلا بچہ جو پیدا ہوگا اس کو شاید یہ ہو.
اچھا
دوسری چیز جو ہمارے یہاں ہوا ہے خصوصیاتی طریقہ کی, کہ بھائی اگر یہ خاندانوں میں شادیاں ہو رہی ہیں, فرسٹ کزنز میں میرجز ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, اس وجہ سے ہے. لیکن پاکستان میں ہم اپنے کلینک میں یہ سوال پوچھتے ہیں, پتہ کرتے ہیں, اور ابھی ایسی کوئی ہمیں نہیں شواہد ملے, بات سامنے آئی ہے کہ یہ رشتے دار قریبی خاندان میں یا رشتے دار میں شادی کرنے سے یہ مرض ہوتا ہے. تو بیسیکلی اس کو ہم اوور آل سوائز کے جیسے میں نے کہا کہ کچھ اب جینیٹک کمپوننٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ سپوریڈک ہے اور اس میں کوئی ابھی کاز صحیح معنوں میں دنیا بھر میں معلوم
نہیں ہو سکتا. اچھا تو یہ یعنی یہ لازمی طور پر پیدائش سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, یہ نہیں معلوم ہو سکا ابھی.
نہیں یہ معلوم ہو سکتا ہے اگر الٹرا ساؤنڈ کیا جائے 16 ہفتے کی 20 ہفتے کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو کلاسٹ ہے یا نہیں ہے, یہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے.
اچھا اور اس کا کوئی علاج اس وقت ممکن نہیں ہے جب وہ بچہ اپنی والدہ کے اس میں رحم میں ہو تو اس کو روکا نہیں جا سکتا؟
ممکن نہیں ہے, اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کسی پونٹی طریقہ علاج ہے جس میں اس کو مینیپولیشن کرتے ہیں, یعنی کہ تھوڑی سی اس کی اس کو ایک خاص پوزیشن میں لے کر آتے ہیں, اس کے بعد اس کو پلاسٹر لگا دیا جاتا ہے. تو اگر پیدائش کے فوراً بعد یہ عمل کیا جائے تو 5 سے 6 ہفتوں میں 5 سے 6 پلاسٹر میں اکثر بچوں کے پاؤں بالکل صحیح ہو جاتے ہیں,
صحیح ہو جاتے ہیں.
اسی وجہ سے یہ ہو گیا اس طریقہ علاج کی, کون سا بھی طریقہ علاج کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اگر اس کو فوراً پیدائش کے فوراً بعد شروع کیا جائے تو اگلے 1.5 سے 2 مہینے کے اندر اکثر بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک بات اس کی ٹریٹمنٹ بہت اہم ہے سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ کئی کچھ بچوں میں تقریباً 50 سے 80 بچوں میں آخری پلاسٹر یعنی 6 پلاسٹر کے وقت چھوٹا سا معمولی کا کٹ لگایا جاتا ہے ہیل میں, جس کو کہتے ہیں چنارمی کہتے ہیں, اور اس کے بعد آخری پلاسٹر 3 ہفتے کا دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے تو
جب یہ پلاسٹر آخری پلاسٹر کرتا ہے اس کے بعد ان بچوں کو خاص قسم کے چیزیں پہنائے جاتے ہیں, جو بریسز کہلاتے ہیں, مچل بریس کہتے ہیں, اسٹیل برگ بریس کہتے ہیں, اسٹیل برگ بریس کہتے ہیں, یا آج کل آئیوا بریس کے نام سے نیا بریس آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ فیملی کو والدین کو سمجھانے کی اور ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آخری جب کاسٹ اترے گی 6 ہفتے آخری 3 ہفتے کے بعد, تو اس کے بعد یہ بچے کو یہ بریسز پہن کر رکھنے ہیں 4 سال کی عمر تک.
ٹھیک اور 4 سال
نہیں پہنیں گے تو یہ پاؤں کو 4 سال کی عمر تک پہننا ضروری ہے, اور اگر نہیں پہنیں گے تو پاؤں پھر دوبارہ سے اندر کی طرف موڑ سکتے ہیں. تو اس ریکرنس کو روکنے کے لیے 4 سال کی عمر تک یہ پہنائے جاتے ہیں, جس کے بعد ریکرنس کا ریٹ بالکل کم, بہت ہی نیگلیجیبل ہے.
تو
ہم کہتے ہیں کہ بچے نے کمپلیٹ کر لی ٹریٹمنٹ, اور اب ان شاء اللہ یہ ایک طرح سے گریجویٹ کر گیا, اب ان شاء اللہ اس کو دوبارہ نہیں ہوگا واپس.
ٹھیک ہے, بے شکریہ ڈاکٹر پروفیسر محمد امین چنائی صاحب. ہماری گفتگو بھی جاری ہے, فیس بک پر بہت سے لوگ ہمارے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے سوال بھی پوسٹ کیے ہیں, ہم ان کے سوال پروگرام کے اگلے مرحلے میں شامل کریں گے. لیکن اس وقت ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اور آپ کے ٹیلی فون کی کوالٹی بہت خراب ہے, ہم آپ کا فون بند کر کے دوبارہ آپ کو کال کرتے ہیں تاکہ آپ کی کوالٹی جو ٹیلی فون کی وہ صحیح ہو سکے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हरदम रवाए जिंदगी, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट पहला कदम के बारे में, जो मुड़े हुए पैरों से पैदा होने वाले बच्चों के इलाज के लिए एक मिशन है जो शुरू किया है एक पाकिस्तानी अमरीकी जोड़े ने जो कैलिफोर्निया में मुकीम है, और उनके साथ कराची का इंडस अस्पताल शामिल हुआ है, और उसके साथ बहुत सारे उनके अजीज दोस्त इस मिशन में शामिल हुए हैं जो इसके लिए फंड रेजिंग करते हैं, और उन बच्चों को, पाकिस्तान के उन गरीब बच्चों को खासतौर पर जो इस इलाज की सहूलत से महरूम हैं, उनको ये फ्री, बिल्कुल फ्री ये इलाज फराहम किया जाता है कराची में भी, और इसके अलावा लाहौर में भी ये इलाज फराहम किया जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और हम शुक्रिया पहले अदा कर दें मोहम्मद रशीद जो फेसबुक पर हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, मोहम्मद बाबर, अशफाक शफी, रूहुल्ला, इम्तियाज कश्मीरी, जुल्फ़ार काजमी साहब, गमे आशकी हैं, अरमान आफरीदी हैं, बहार अली रिंद हैं, कमरुल कुद्दूस सुलहरी हैं, नसीरुल्ला औरगज़ई हैं, महबूब अली अकबर हैं, डेरा अल्लाह बख्श सियाद पाद हैं, और महमूब मुश्ताक साहब हैं, इनका एक 10 साल का बच्चा है, उन्होंने इसके बारे में पूछा कि क्या इसका इलाज हो सकता है, और नसीबुल्ला ने पूछा है कि 1 साल की बच्ची है उसका क्या इलाज हो सकता है। तो हमारे साथ इस वक्त अब गुफ्तगू में शामिल होंगी इंडस हेल्थ नेटवर्क के सेंटर फॉर एसेंशियल सर्जिकल एंड एक्यूट केयर की प्रोग्राम डायरेक्टर और एक पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर लुबना समद, जो पहला कदम के साथ हर मरहले में शामिल रही हैं, कराची से हमारे टेलीफोन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर लुबना समद साहिबा। बेहद शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का, बहुत सारा कुछ तो बताया डॉक्टर, हमारे जो इस प्रोजेक्ट के सरबरा हैं पहला कदम के कराची में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन चुनाई ने, आप पहले इन दोनों के सवाल का जवाब अगर दे सकें तो दे दीजिए कि 1 साल की बच्ची है नसीबुल्ला साहब की, वो कह रहे हैं मैं क्या करूँ, वो चल फिर नहीं सकती, और महबूब मुश्ताक ने पूछा कि क्या 10 साल के बच्चे का भी इलाज हो सकता है जिसके पैर मुड़े हुए हों।
जी हाँ बिल्कुल, इलाज तो हो सकता है, जो बात बहुत जरूरी है मालूम करने के लिए वो ये है कि क्या ये पैर के मुड़े हुए होने की वजह क्लबफुट ही है या फिर और ऐसी कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से इनको ये मसला है। तो बेहतर है कि अगर ये किसी ऐसी फैसिलिटी में या सेंटर में या अस्पताल में चले जाएं जहाँ पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन इनको देख के राय दे सके, तो फिर वो बेहतर गेज कर सकेंगे कि ये किस हद तक पैर मुड़े हुए हैं और इसका इलाज बेहतर किस तरीके से हो सकता है। अमूमन जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं पहला कदम क्लिनिक में वो सीरियल फास्टिंग होता है, यानी कई प्लस्टर लगते हैं हफ्ते हफ्ते के वक्ते पे जिसकी वजह से पैर अपने सही पोजिशन पे आते हैं। ये प्लस्टर का जो इलाज है वो जितना बच्चा छोटा हो उतना बेहतर इलाज होता है। तो 1 साल का बच्चा अगर उसको क्लब फुट है तो उसका इलाज प्लास्टर के जरिए हो सकता है, और 10 साल के बच्चे में फिर देखना पड़ेगा कि इससे अब तक क्या इलाज हुआ है, इसके साथ कोई और मसाइल तो नहीं है, और उसके बाद फैसला किया जा सकेगा कि क्या इसका बेहतर इलाज का तरीका होगा।
तो ये जो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें तो बताई, ये अगर वो मौजूद हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं, लेकिन आपको भी ये मालूम होगा कि एक जो बच्ची का या एक बच्चे का जो इलाज होता है उस पर पाकिस्तान में कितना खर्च आता है, और ये जो इंडस अस्पताल में जो इसका जो इलाज फराहम किया जाता है बिल्कुल फ्री, तो कैसे वो उस पर कितनी लागत आती है और कितने अरसे में वो इलाज हो जाता है?
इलाज जो है वो इंडस अस्पताल में, तो पहले आपने प्राइस की बात की, इंडस अस्पताल में तो हम इलाज फ्री करते हैं। इसके अलावा जैसे आनंद ने जिक्र किया था, इंडस हॉस्पिटल और कुछ और पार्टनर्स के साथ हमने
मेरा ख्याल है डॉक्टर लुबना समद साहिबा आपके टेलीफोन की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है और हमारे सुनने वालों को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप अपना फ़ोन बंद कीजिए और किसी तरह सिग्नल ऐसी जगह पर हो जाइए जहां सिग्नल सही आए ताकि हम आपकी बात लोगों तक पहुंचा भी सकें। और इस दौरान अगर आयशा हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उनसे बात कर सकते हैं। आयशा हैदर साहिबा अस्सलाम वालेकुम।
जी क्या बात करनी है आपने, मैं कोई काम नहीं करती हूँ मगर मैं इंडस की बेहद तारीफ करूँगी, बहुत ज़्यादा जो इंडस कर रहा है वो एक उसने प्लेटफॉर्म दिया है कि आमिर की एक ड्रीम थी कि कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा और वो इंडस पूरी कर रहा है।
जी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि ये आयशा हैदर हैं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं आमिर हैदर साहब की वालिदा हैं, मुनीरा शमीम की सास हैं, खुशदामन हैं, और उस बच्ची की दादी हैं जिनकी जिसकी वजह से डॉक्टर आमिर साहब ने और इनके भाई हैं आदिल हैदर, इन दोनों ने भी इस मिशन को शुरू किया पहला कदम के। और आयशा हैदर साहिबा जो हैं बड़ी फंड रेजिंग भी करती हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो कुछ बताइए आयशा क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको जब आप फंड रेजिंग करती हैं या लोग बड़े आराम से फंड दे देते हैं, चंदे देते हैं कि बच्चों का इलाज कराएं?
आपको पता है क्यों देते हैं लोग? इसलिए कि मैं काम करती हूँ, मैं पाकिस्तान आती हूँ पांच पांच चार चार महीने, मैं क्लिनिक जाती हूँ, मैं घंटों क्लिनिक में लगाती हूँ, मैं उन गरीब बच्चे जिनके हालत इतनी गंदी होती है, खराब होती है, मैं उन बच्चों को गोद में लेती हूँ, उन माओं को गले से लगाती हूँ।
अच्छा,
वो दैट्स व्हाई दैट मनी कम। जब मैं ये और जहां मैं जाके इसकी वो देती हूँ स्पीच, क्योंकि वो मेरी पोती है और मेरी पहली पोती है वो, तो मेरा खून है।
अच्छा, तो अब आप कैसा महसूस करती हैं जब आप अपनी उस पोती को चलते फिरते भागते दौड़ते देखती हैं, कितने तो क्या महसूस होता है आपको, और वो बच्ची आपको मजीद तहरीक देती है कि आप ये मिशन को आगे बढ़ाएं?
देखिए मेरी बच्ची तो अमेरिका में रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है अमेरिका में आप भी हैं कि अमेरिका का क्या इलाज होता है। मुझे वो बच्चे देख के खुशी होती है, जब मैं यहाँ आती हूँ तो माए मेरा दामन पकड़ पकड़ के दुआएं देती हैं। मैं कहती हूँ मैन मुझे दुआ नहीं दो, क्योंकि पैसा मेरा नहीं है, पैसा मेरे बेटे का है, और बहुत बड़ा दिल चाहिए बंदे को ये पैसा खर्च करने इन चीजों पे। देखिए हर आदमी कैलिफोर्निया में आपको पता है बेरिया में चाहता है बड़ी से बड़ी गाड़ी रख ले, 8 मिलियन का घर रख ले, उसका स्टेटस बन जाए, कोई ये जो सोचना नहीं जी हमने यहाँ पैसा अपने वतन पे खर्च करना है जो है वो बहुत बड़ी चीज है। और जो ये बच्चे जो पहली बच्ची जो हमारे क्लिनिक में आई, मैं तो अपनी कहती हूँ क्लिनिक क्योंकि मैं काम करती हूँ, जब पहला पॉजिटिव का वो था मेथड का जो हम फर्स्ट उनका उसमें लुबना मंसूर सब लोग आए थे, उसमें ये छोटी सी थी 5 साल की बिल्कुल, हम मैं और आमिर और उनके अबू लेके गए थे, वो बच्ची रात में इतना रोई, ओ आई वॉन्ट माई मामा आई वॉन्ट माई मामा जो है, तो हम उसको ले गए थे और वो मैंने अटेंड किया था फंक्शन।
अच्छा, तो आपने आपके दोनों बेटों ने डॉक्टर आदिल हैदर और आमिर हैदर दोनों के साथ साथ अपनी अपनी आपकी जो बहू हैं वो भी साथ शामिल, यानी पूरा घर आपका शामिल है पहला कदम के प्रोजेक्ट को अगले कई कदम तक आगे बढ़ाने में एक अरसे से। और बड़ी बात है कि अब तक हजारों बच्चों का इलाज हो चुका है और बच्चे अपने पाँवों पर खड़े हो सके हैं इसलिए कि उनका इलाज मुफ्त हुआ जो वो नहीं करा सकते थे। बेहद शुक्रिया आशा।
इसमें मैं फिर कहूंगी कि इंडस ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, वरना हम ये ड्रीम अपनी पूरी नहीं कर सकते थे। और उसका जो बच्ची पहली बच्ची इंडस में पहले दिन आई थी वो 5 साल की हुई, उसने पता नहीं 750 बच्चों में 3rd पोजीशन अपनी ली जो है,
तो ये बड़ी बात है।
दैट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ व्हेन आई वाज देयर, मैंने बच्ची को मिली और ये, और अभी भी मैं जो है ना क्लिनिक जाती हूँ और लोगों से मिलती हूँ और लोगों की जो लोग इतनी इंडस की तारीफ करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और जो जो मेरे दोस्त हैं वो बेलॉस देते हैं पैसा, उनको पता है कि ये पैसा जो वो दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, इंडस उनको फॉरन वो भेजता है। तो इसमें मैं अपने बेटे का शुक्रिया अदा करूंगी कि सारी मेहनत और पैसा तो उनका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काम मैं करती हूं।
काम आप करती हैं। बेहद शुक्रिया आयशा हैदर साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप बेशक हमारे साथ रहिए, सुनिए बाकी प्रोग्राम को भी। और हम अब शामिल करेंगे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जीशान, इंडस अस्पताल के तहत जो लाहौर का अस्पताल है, गवर्नमेंट का अस्पताल है, मनवा अस्पताल गालिबन उसका नाम है, या हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ, उसके आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के सरबरा हैं। और जो पहला कदम का प्रोजेक्ट है इंडस अस्पताल में उसमें भी उन्होंने काम किया है और अब लाहौर में भी ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं और पहले ये कराची में रहा करते थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद जीशान असलम साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
बेहद शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। आप बताइए कि लाहौर में ये प्रोजेक्ट कैसे पहुंचा और क्या आपने इसको शुरू किया या कोई किस तरह ये लाहौर तक ये पहुंच गया प्रोजेक्ट?
जी जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे मौका देने का बात करने का। और लाहौर में जैसा कि आपने पहले बताया कि मैं पहले कराची में होता था और कराची में मैं काम कर चुका हूँ, तो कराची में मैं इंडस हॉस्पिटल में इस प्रोजेक्ट में पहला कदम में फ्रॉम डे वन انوالو تھا. وہاں پہ میں نے ٹریننگ حاصل کی کہ کس طرح یہ پونسیٹی کاسٹنگ لگائی جاتی ہے, کس طرح سیریل کاسٹنگ ہوتی ہے, کس طرح پیشنٹ کو بچے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اس طرح کرتے کرتے تقریباً میرے 4 سال ادھر جو ہے نا کمپلیٹ ہوئے. اس کے بعد پھر میں انڈس ہاسپٹل سے چلا گیا اور مختلف ہاسپٹلس میں 2 مہینے انٹرنیشنل فیلوشپس کی. پھر واپس میں نے آ کے دوبارہ سے انڈس ہاسپٹل کو جوائن کیا. اور انڈس ہاسپٹل ماشاء اللہ اب صرف ہاسپٹل نہیں رہا, ایک نیٹورک بن گیا ہے. تو یہ نیٹورک پورے ملک میں پھیل رہا ہے, مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف ہاسپٹلس ہیں, کیمپسز ہیں. ان میں سے ایک کیمپس مناوا کیمپس ہے لاہور میں, جدھر ہم نے یہ پروگرام شروع کیا. شروع تو انڈس کراچی میں ہوا ہوا تھا, ہم اس کو آگے لے کے چلے, اسٹیپ فارورڈ لے کے چلے اور لاہور میں ہم نے لانچ کیا. تو الحمدللہ پہلے جو ہے ادھر آنے کے بعد لاسٹ ایئر 2017 میں انیشلی پلاننگ کی گئی, پلاننگ کے بعد لوگوں کی ٹریننگ کی گئی, پھر پبلک اویئرنیس تھی وہ لوگوں تک پہنچائی گئی, ہاؤس کلینکس میں جا جا کے لوگوں کے گھروں تک جا جا کے بتایا گیا کہ یہ جو ہے کلب فٹ ہوتا کیا ہے, ٹیڑھا پن, اور اس کا علاج کیا ہے, اور اس کا علاج ممکن ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن کی بھی کمی ہے اور اویئرنیس کی بھی کمی ہے, تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری تھا کہ سب سے پہلے کہ لوگ ہسپتال تک آئیں اور اس کا علاج کرائیں.
تو کیسے کیا ایجوکیٹ آپ نے لوگوں کو, اور کیسے پتہ لگا کہ کس گھرانے میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہو گیا جس کے پیر مڑے ہوئے ہیں, یا ایسا بچہ موجود ہے جو 5 سال تک کا ہے اور اس کا علاج ابھی تک نہیں ہوا؟
جی جی, جس طرح میں نے بتایا پبلک اویئرنیس. اس طرح یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون سے گھر میں یہ بچہ موجود ہے, لیکن ہم نے اس کے لیے ٹیم بنائی اور ہم نے جا کے لوگوں کے گھروں میں بروشرز بانٹے, لوگوں میں جا کے اپنے نزدیک کے جو علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کو بتایا گیا کہ اس طرح کہ اگر کوئی بھی بچہ ہو آپ کے علاقے میں, اڑوس پڑوس میں, جاننے والوں میں, تو انہیں یہاں پر لے کر آئیں اور اس کا علاج اس طرح ممکن ہے. اس طرح ہم نے جو ہے اویئرنیس پھیلائی ان کمیونٹی.
تو کتنے آپ کے لاہور کے اس ہاسپٹل میں, صرف آپ کے ہاسپٹل میں یہ علاج ہو رہا ہے کہ پاکستان لاہور کے دوسرے ہاسپٹلز میں بھی یہ سہولت موجود ہے؟ جیسا کہ انڈس ہاسپٹل والوں نے تو کوئی ٹریننگ بھی غالباً دی ہے, اگر ڈاکٹر ہمارے ساتھ چنائے ہوتے تو وہ بتاتے کہ ٹریننگ بھی دی گئی ہے. ڈاکٹر چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ڈاکٹر امین چنائے صاحب. ڈاکٹر چنائے صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو انڈس ہاسپٹل کا یہ جو پروجیکٹ ہے پہلا قدم کا, اس کے تحت آپ نے پاکستان بھر کے ڈاکٹروں کو بھی ٹریننگ دی ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے, کر سکتے ہیں وہ؟
جی, اس میں ہمارا ایک پروجیکٹ تھا یونیورسٹی آف آئیووا کے اشتراک سے, جس میں ہم نے کچھ فنڈنگ آئی تھی ہماری یو ایس اے آئی ڈی کے تھرو, یونیورسٹی آف آئیووا کے تھرو آئی تھی. اس میں ہمارے پاس کیپیسٹی بلڈنگ کے فنڈ تھے, اس میں ہم نے پاکستان بھر سے 40 ڈاکٹرز کو, آرتھوپیڈک سرجنس کو ہم نے کراچی بلا کر 2 ہفتے کی ٹریننگ دی. وہ ان کا کراچی آنے جانا, کراچی میں ہوٹل میں رہنا, اور ان کی ٹریننگ جو کہ کراچی میں انڈس ہاسپٹل میں ہوئی, جناح ہاسپٹل میں ہوئی, اور لیاقت ہاسپٹل یونیورسٹی جامشوروں میں کی گئی ہے ٹریننگ. تو یہ ساری ٹریننگ کے خرچے ہم نے اس گرانٹ سے پورے کیے, اور 40 سرجن پورے پاکستان سے ہمارے پاس آئے اور ہم سب کو ٹرین کیا.
اچھا, تو یہ جو نہیں, تو یہ جو سارے ڈاکٹرز ہیں, اس کا مطلب سارے پاکستان کے مختلف ہاسپٹلز میں یہ علاج اب ہو رہا ہے اور فری ہو رہا ہے؟
جی, ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے 40 ڈاکٹرز کو کیا تھا, اور ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ 40 میں کم سے کم 15 سے 20 لوگ ریگولر بھی کریں گے, تو کافی ہم پاکستان میں نئے پیدا ہونے والے بچوں کو ہم کور کر لیں گے, اور ان شاء اللہ کوئی بھی بچہ انٹریٹڈ نہیں رہے گا. تو الحمد للہ اس وقت کوئی اچھا. اس کے بعد پہلی بات یہ بتا دوں کہ ہم نے 1 سال نکل لیے, پھر ہمارے پاس گرانٹ کے کچھ پیسے بچ گئے تھے. ہمارا ٹارگیٹ تو یہی تھا کہ 40 کریں گے, لیکن کیونکہ پیسے بچے ہوئے تھے, ہم نے اگلے سال 15 اور لوگوں کو بھی ٹرین کیا. اس طرح ٹوٹل ہم نے 55 لوگوں کو ٹرین کیا, اور پہلے 2 سالوں میں 22 سینٹرز پورے ملک میں کھل گئے, جو پہلا قدم کے نام سے نکلے, لیکن ٹرسٹ ٹریٹمنٹ پنچایتی کلینک کے نام سے کام کر رہے تھے. پہلا قدم انڈس کا برانڈ میں ہے, اور وہ چونکہ ہمارا اپنا برانڈ ہے ایک طرح سے, تو ہم اس کو کراچی میں اپنے سینٹر میں, اس کے علاوہ لاہور میں مناوا ہاسپٹل میں, مظفر گڑھ میں سید بردک ہاسپٹل میں, اور بدین سول ہاسپٹل بدین میں جو انڈس کام کر رہا ہے, ان تمام سینٹرز میں, چونکہ انڈس کے اپنے سینٹرز ہیں, انڈس کے برانڈ کے پہلا قدم کے برانڈ کے تحت کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ 40 سے 45 سینٹرز اس ملک میں اور کام کر رہے ہیں, لاہور میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں, اور گورکی ٹرسٹ ہاسپٹل میں بھی یہ پہلا کیا کہتے ہیں काम कर रहे हैं।
अच्छा, तो मेरा वो सवाल अभी भी एक तरफ रह गया कि एक बच्चे पर अगर किसी और हॉस्पिटल में इलाज हो तो कितना खर्चा आता है, ताकि वो वालदैन जो सुन रहे हैं जिनके यहाँ कोई बच्चा ऐसा मौजूद है वो अंदाजा लगाएं कि अगर वो ये इलाज मुफ्त उनको मिल जाए तो वो आप लोगों से रब्ता करें, और फिर आप ये बताइए कि वो आपसे कैसे रब्ता करें, क्या तरीका क्या हो उनसे रब्ते का। बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक पर आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं। जी
इंडस हॉस्पिटल में तो ये इलाज टोटली फ्री होता है, लेकिन ऑब्वियसली फ्री का मतलब ये नहीं कि हमारा कॉस्ट नहीं है। तो टोटल हमारा जो पूरे चार साल इलाज है, जिसमें से जो हमारे आपको बताया कि ब्रेसेज है, और ये ब्रेस हर बच्चे को छह महीने बाद, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो हमें अगली साइज का ब्रेस देना होता है बच्चे को। तो ये चार साल तक हम ब्रेस प्रोवाइड करते हैं, और हमारा ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपनी हमारी एक रिसर्च पैकेज है जो पब्लिश भी हुई है, एंड आईओ इंटरनेशनल टेस्ट में, उसमें हमारी कॉस्ट जो इंडस हॉस्पिटल को आ रही है वो तकरीबन $250 है, यानी तकरीबन 30,000 रुपया इस वक्त पाकिस्तानी है जो इस वक्त हमें कॉस्ट आ रही है पूरे चार साल की ट्रीटमेंट की।
नहीं, एक बच्चे पर 30,000 आप कह रहे हैं खर्च होता है तो आपका, लेकिन वैसे कितना खर्चा आता है? 30-32,000
बच्चों को देखे ना, वो तो आप कोई भी प्राइवेट में मत लगाने हो तो उनकी मर्जी होती है प्राइवेट हॉस्पिटल।
जी जी, नहीं, लेकिन 30,000 तक का एक खर्चा आता है जो आप उसको बिल्कुल फ्री फराहम करते हैं, और आप लोग ये भी चाहते हैं कि अगर कोई आपके
साथ वीकली कास्टिंग करते हैं तो चुनावी का कॉस्ट है, उसके बाद
नहीं, टोटल मैं आपसे सिर्फ ये सवाल, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि टोटल कॉस्ट कितनी आती है और आप उसका फ्री इलाज करते हैं, सिर्फ मैं ये आइडिया लेना चाह रही हूँ, ताकि जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अगर वो चाहें कि किसी एक बच्चे की मदद कर सकें तो वो अपने बजट में देख सकें कि आया वो किसी एक बच्चे की मदद के लिए आपके साथ इस मिशन में शामिल हो सकते हैं या नहीं, ये बता दीजिए।
$250
यानी आपके तकरीबन 25,000 या 30,000 रुपए पाकिस्तान के होते हैं जो एक बच्चे को जिंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। तो ये बड़ी बात है कि लोग ये फंड चंदे देते हैं या डोनेशन देते हैं, जिसकी मदद से ये तमाम आपका सिलसिला जारी है। आपसे हमारी गुफ्तगू भी जारी है, लेकिन एक सवाल जहीर अली ने पूछा है फेसबुक पर कि मैं 27 साल का हूँ, मेरे पाँव थोड़े से मुड़े हुए हैं, क्या इसका इलाज हो सकता है?
बात यह है कि इलाज तो हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं, कौन से भी तरीके से हो रहे हैं, दोहरी बात जैसे डॉक्टर लोग ने कहा था, मेरे खर्चा डॉक्टर की अच्छी नहीं आएगी, जितनी जल्दी इलाज किया जाता है इस तरीके बच्चा दाइश के बाद उतने अच्छे दिन होते हैं। 27 साल की उम्र में अनफॉर्चुनेटली अगर ये हम, हेलो
जी 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 जी,
27 साल की उम्र में अगर हम ये इलाज करें तो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि फिर हमें कुछ सर्जिकल जितना कुछ सर्जरी करनी पड़ जाए।
अच्छा अच्छा अच्छा, इसी तरह एक ने पूछा कि 25 साल की इनकी उम्र है और इनका भी एक पांव जो है वो सही नहीं है, फैसल शाह महमद है, तो आप इनसे भी यही कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है कि आप हो सके। तो असल नुक्ता यह है कि जितनी जल्दी आपने कहा कि
मुमकिन नहीं, बल्कि ये हम उनको देख कर अटेस्ट करेंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कितना करेक्ट कर सकते हैं,
कितना करेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर जीशान, डॉक्टर लुबना से हमारी बात नहीं हो पाई थी, डॉक्टर लुबना समझ हमारे साथ मौजूद है?
जी हाँ, मैं मौजूद हूँ। हाँ, आवाज कुछ बेहतर है?
हाँ, आप बिल्कुल काफी बेहतर है। तो आप बताइए हमारे, हम आपको बता दें कि शाजिया खान है, अली रजा है, फैसल शाह मोहम्मद, फकीर गुलाम हैदर संजरानी है, और बहुत सारे और भी हैं फेसबुक पर जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि उनको वो आपसे रابطہ करें, तो कैसे رابطہ करें? मोहम्मद आशिक खासखेली ने पूछा था कि कैसे رابطہ किया जा सकता है, उनका कोई रिश्तेदार बच्चा है जो इलाज कराना चाहता है, तो कैसे इंडस अस्पताल के इस प्रोजेक्ट से या पहला कदम से वो इस्तेफादा करें, कैसे رابطہ करें?
जी, सबसे आसान तरीका है कि आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, बेहतर है कि दिन के वक्त कॉल करें, सुबह 9 और 5 के बीच में, 0333-0348-224।
दोहरा दीजिए।
मैं दोहराती हूँ, 0333-0348-224। और अगर कराची में मुकीम है और आना आसान है तो इंडस अस्पताल मेन कुरंगी क्रॉसिंग पे है। यहाँ पे हर हफ्ते के रोज 9 से लेके 11 बजे तक या किसी भी मंगल के रोज दोपहर 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक क्लिनिक जारी होती है, और उस क्लिनिक में आके बच्चे के साथ आ जाएं और दिखा दें वहाँ पे। तो यहाँ तो टेलीफोन कर लें या खुद आ जाएं।
तो हम कोशिश करेंगे कि आपके जो इंडस अस्पताल कोरंगी का जो लिंक है वो हरदम रमाएं जिंदगी के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर देंगे, ताकि बाद में भी जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो आकर हमारे आप तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढ सकें। और अगर किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसके पाँव मुड़े हुए थे वो पैदा होते वक्त और अभी तक उसका इलाज नहीं हो सका, तो ये इलाज मुफ्त फराहम कर रहा है इंडस अस्पताल का नेटवर्क, जो कि पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर चिनॉय साहब ने बताया कि बहुत सारे मराकज हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां ये इलाज मुफ्त हो रहा है। हमारी गुफ्तगू भी जारी है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है डॉक्टर लुबना समत, और हम आपसे थोड़ी सी बातें और भी करेंगे, लेकिन क्योंकि अब एक ब्रेक का वक्त हो गया तो पहले एक ब्रेक ले लेते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन का प्रोग्राम पहला कदम, वो प्रोजेक्ट जो कि ऐसे बच्चों के इलाज फ्री कराने में मसरूफ़ है और जो पाकिस्तान में मुड़े हुए पैरों के साथ पैदा होते हैं, और उसके बाद अगर उनका जल्द, हमारे आज के पैनल में जो माहिरीन है वो बता रहे हैं कि इसका अगर जल्द इलाज करा लिया जाए तो वो बच्चा सारी उम्र अपने पैरों पर चल सकता है, उसके पांव सीधे हो सकते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं इस वक्त इंडस हेल्थ नेटवर्क के सेंटर फॉर एसेंशियल सर्जिकल एंड एक्यूट केयर की प्रोग्राम डायरेक्टर और एक पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर लुबना समद, जो पहला कदम के हर मरहले में शामिल रही हैं, कराची से हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं। उन्हीं से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, अब उनसे फिर एक बार फिर उनसे सवाल करते हैं। डॉक्टर लुबना, ये बताइए कि ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है जो माशरे में मुड़े हुए पैरों के साथ बड़े हो चुके हैं?
देखिए, मतलब सारा ये है कि ये बीमारी जब एक गरीब घराने के बच्चों को मुतासर करती है तो अमूमन वो बच्चा ना पढ़ने के लिए स्कूल जा सकता है, क्योंकि पैदल चल के जाना पड़ता है स्कूल अमूमन, और ना वो बच्चा फिर किसी नौकरी या आमदनी के काबिल होता है, और अक्सर ये बच्चे भीख मांगने रस्तों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। कई मरतबा कराची में, पाकिस्तान के और शहरों में दिखा है कि बच्चे जिनको कोई माजूरी होती है वो भीख मांगने के लिए सड़क पे मौजूद होते हैं। तो अगर ये तो सबसे आई थिंक बदतरीन सोशल डिजास्टर है कि एक बच्चा जो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, एक ऐसा मर्ज जिसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है, उसके बायस एक बच्चा जो है वो अपनी पूरी जिंदगी उसकी खराब होती है। और हमारे पास, आपको जैसे पता है, पाकिस्तान में डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं, माजूरी के साथ जो लोग हैं, उनके लिए वो सहूलियात फराहम नहीं होती हैं जो और ममालिक में हैं। तो उनकी जिंदगी, आप समझे, उसका एक बहुत ही बड़ा ये मसला हो जाता है, जिंदगी भर रहता है। इसके अलावा जैसे बच्चे बड़े होते हैं और ये पाँव के मुड़ने का अमल मजीद खराब होता रहता है, तो बच्चे के लिए चलना फिरना तकलीफ दे होता है, वो बच्चा हमेशा तकलीफ में होता है, और ना सिर्फ माजूरी लेकिन तकलीफ भी होती है, तो एक अपाहज की जिंदगी वो गुजारता है। जो बच्चे बेहतर घरों में पैदा होते हैं, जिनको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी का एक्सेस है, उनके लिए जिंदगी ऑब्वियसली बेहतर होती है, क्योंकि वो उनको फैसिलिटीज भी मिल सकती हैं, वो जाके इलाज भी करवाते हैं, बड़ी उम्र में कुछ ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं जो कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो असल मिशन है वो उन बच्चों की मदद करना है जिनके लिए अगर इलाज मुफ्त फराहम ना किया जाए तो उनके आगे बहुत ही एक बुरा फ्यूचर, मुस्तकबिल उनका बहुत ही ब्लीक होता है, तो उन बच्चों की मदद करना हमारा मिशन है।
अच्छा, ये फेसबुक पर सवाल पोस्ट किया है तौस खान ने, और उन्होंने पूछा है कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ है, तो एक बार जरा दोबारा बता दीजिए।
जी, कराची में मेन कुरंगी क्रॉसिंग पे इंडस अस्पताल वाकई है, इसके अलावा बदीन में क्वार्टर अस्पताल इंडस चलाता है, जहां पे क्लब फुट की का इलाज शुरू हो चुका है। इसके अलावा लाहौर में मनामा हॉस्पिटल है, जहां पे डॉक्टर ईशान होते हैं, जिनसे आपकी भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। और मुजफ्फरगढ़ में भी हमारी टीम है, मुजफ्फरगढ़ सदन पंजाब में है, वहां पे भी हमारी टीम है, जो पहला कदम का क्लिनिक के तहत क्लब फुट के बच्चों का इलाज करती है।
शाजिया खान ने पूछा, जैसे डॉक्टर शाजिया खान ने पूछा कि कश्मीर में क्या क्या कर सकते हैं ये इलाज, कश्मीर में है कहीं पाकिस्तान के?
जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं है, इंडस हॉस्पिटल का तो वहाँ पे सेंटर नहीं है, लेकिन अगर वो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें तो हमने जो 53, 55 करीब के ऑर्थोपेडिक सर्जन को ट्रेन किया है, हम मैच कर सकते हैं कि वो कौन सी फैसिलिटी है जो उनके लिए करीब तरीन पड़ेगी, जहाँ पे हमारे प्रोग्राम के तहत ट्रेंड सर्जन पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये मोहम्मद अहमद हैं, इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है फेसबुक पर कि मेरे चार भाई हैं और एक बहन और सब माजूर हैं और वो उनको कोई सेरेब्रल पाल्सी डिजीज हो गई है, तो वो क्या आपका सेंटर उनको कोई मदद फराहम कर सकता है?
जी, सेरेब्रल पाल्सी और क्लब फुट बिल्कुल मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, तो इंडस अस्पताल के सेंटर्स में मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों के इलाज होते हैं। जिस तरह से पूरा मुझे कुरंगी कैंपस है, ये तो फुली फंक्शनिंग एक टर्शरी लेवल अस्पताल है, जिसमें हर किस्म के कार्डियक बाईपास से लेके गुर्दे के इलाज, बच्चों के कैंसर के इलाज सब कुछ होते हैं। तो अगर वो आ जाए और जो भी मसाइल हैं वहाँ पे बता सकें तो इलाज हो सकेगा, लेकिन ये क्लब फुट के मर्ज से बहुत ही मुख्तलिफ मर्ज है।
ठीक है, और हम अपने आप हमारे सुनने वालों को ये भी बता दीजिए लगे हाथों कि इंडस हॉस्पिटल सिर्फ ये जो क्लब फुट है ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, वो तो कितने सारे अमराज का इलाज फ्री कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। ये पहला हॉस्पिटल है जो कि कितने सारे अमराज, हत्ता के कैंसर तक का इलाज फ्री कर रहा है, जिस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। कुछ मजीद बताना चाहें तो आप इंडस हॉस्पिटल के बारे में बता सकती हैं हमारे सुनने वालों को?
इंडस हॉस्पिटल 2007 में कराची के कुरंगी क्रॉसिंग पे, जैसे मैंने बयान किया था, पहला कैंपस वहां पे खुला था, और इसमें ये बिल्कुल पहले दिन से 100% मुफ्त इलाज कर रहे हैं। अगर मरीज देना भी चाहे तो हम बिल के तहत के सूरत में पेमेंट नहीं लेते, अगर मरीज या उसकी फैमिली या कोई भी डोनेशन देना चाहे वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें इलाज से कोई ताल्लुक नहीं है, जो देना चाहे जरूर दे। ज्यादातर 95% मरीज, 98% मरीज बिल्कुल ऐसे तबके से ताल्लुक रखते हैं जिनके पास कोई वसाइल नहीं है जो इस किस्म के महंगे इलाज कर सकें।
बिल्कुल,
इंडस अस्पताल कराची में जैसे मैंने बताया, कार्डिक बाईपास, किडनी डिजीजेस के इलाज, बच्चों की सर्जरी जो मैं करती हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, क्लब फुट के अलावा बहुत कंडीशंस हैं, जनरल सर्जरी जो बड़ों में बच्चों में होती है वो, कैंसर के इलाज, सब किस्म के इलाज होते हैं। और इस वक्त इंडस अस्पताल कराची कैंपस जो है वो 150 बेड से शुरू हुआ और अब अंदाजन 300 बेडेड अस्पताल है। इस वक्त जो मुहिम जारी है वो ये है कि एक 1800 बेड यानी 1800 बेड की फैसिलिटी हम बनाएं, और इसकी तामीर शुरू हो चुकी है, आधी तामीर हो चुकी है, और हमें उम्मीद है कि इस अस्पताल के बनने के बाद हम कराची और आसपास के इलाकों के जरूरियात बेहतर पूरी कर सकेंगे।
ठीक है,
इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 11 अस्पताल हैं जो इंडस अस्पताल चलाता है। ये मैंने आपको बताया बदीन, लाहौर के आसपास 6 अस्पताल हैं, मुजफ्फरगढ़ में और कई जगहों। इसके अलावा हमारे प्राइमरी केयर सेंटर्स, टीबी और मलेरिया के इलाज के सेंटर्स,
यानी आप ये कह रही हैं कि हर किस्म का इंडस अस्पताल हर किस्म के मर्ज का इलाज बिल्कुल फ्री करता है, और इसके मराकज पूरे पाकिस्तान भर में हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों से वाबस्ता हैं, तो जो कोई भी चाहता है, अगर उनकी हमाली हालात ऐसे हैं कि वो अपना इलाज नहीं करा सकते, तो इंडस हॉस्पिटल गूगल करें और उसके लिंक पर जाकर रब्ता करें, और इंशाल्लाह, और जैसा कि डॉक्टर चुनॉय ने भी बताया और डॉक्टर मिसेस समद भी बता रही हैं कि वो इलाज फ्री जैसा उसको आ सकता है। तो अब गुफ्तगू में एक बार फिर शामिल करते हैं, इस पहला कदम की तरफ वापस आते हुए कुछ कदम पीछे जाते हैं, आमिर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और मुनीरा शमीम हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर हैदर और मुनीरा शमीम साहिबा, बताइए कि अब ये जो पहला कदम आपने शुरू किया था 11 साल पहले, कितने कदम आप आगे आ चुके हैं और कितने कदम मजीद आगे जाने का इरादा रखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि आपका ये मिशन कभी पूरा हो जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बच्चा मौजूद नहीं होगा जिसके जो मुड़े हुए पैरों के साथ बड़ा हो?
जी शुक्रिया, आपने फिर सवाल पूछा आपने। मैं आमिर हैदर बात कर रहा हूँ।
जी जी
जो इस बात पे, सवाल पे मैं एक और स्टोरी सुनाना चाहूंगा। वो ये है कि जब हमें ये आइडिया हुआ कि हम किस तरीके से वापस गए पाकिस्तान को, तो हमें ये मालूम था कि हम यहाँ बैठे हैं अमेरिका में, बहुत मुश्किल है कि हम यहाँ से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक नया नॉन प्रॉफिट खोल रहे हैं एक आइडिया पे। हमारा आइडिया ये था कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मतलब लोग हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में, हम उनको किस तरह से एम्पावर करें कि ये काम करें। अब इंडस हॉस्पिटल जैसे तुमने बनाया था कि ये तो चल ही रहा है, एक पूरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम किस तरह, हम उनके पास गए और हमने कहा कि देखिए हमारे पास एक आइडिया है, अगर आप इसको अडॉप्ट कर लें तो हमें बहुत खुशी होगी। तो इंडस हॉस्पिटल वालों ने बहुत ही रिसर्च बेस्ड प्रोसेस लगाया। अच्छा, पहले अच्छा आइडिया है, इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे ने बताया कि एक बच्चा सिर्फ जो बिल्कुल ठीक हो सकता है, वो सिर्फ 25,000-30,000 रुपए में उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। वो इलाज नहीं करना एक जुर्म है।
बिल्कुल।
तो
इस वक्त जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत सारे मुखिया हजरात पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में भी सुन रहे हैं, आप उनसे कहना चाहेंगे कि वो आपके इस मिशन में शामिल हों तो सिर्फ एक बच्चे के इलाज के लिए उसको 25,000-30,000 रुपए चाहिए और वो आपके साथ अगर शामिल हो तो कैसे रब्ता करें और कैसे वो पैसे आप तक पहुंचाएं?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से पहुंचाएं कि पहला कदम .org की वेबसाइट है, उस पे जो है जाएं और उस पे डोनेशन का बटन है, बल्कि इंडस हॉस्पिटल की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। द फ्रेंड्स ऑफ इंडस हॉस्पिटल है USA में, और पाकिस्तान में ऑफकोर्स इंडस हॉस्पिटल की वेबसाइट है, उस पर भी आप डोनेशन दे सकते हैं। उसमें एक अपॉर्चुनिटी है, पहला कदम का प्रोजेक्ट है, आप उसको क्लिक करें और जो आप डोनेशन देंगे वो पहला कदम के प्रोजेक्ट में जाएगा। ऑफकोर्स आप जनरल इंडस के फंड्स को भी आप दे सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। मगर ये मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, एक आई गेस जो मैसेज था वो मेरा ये था कि अगर आपका आइडिया है कोई, कि जैसे आपके पास आपकी फैमिली में कोई मर्ज आया या कोई चीज डिसेबिलिटी आई है, अगर आप उसको पाकिस्तान में रिटर्न करने चाहते हैं, आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को देखें पाकिस्तान में कौन कर रहा है उस पर काम और उसको सपोर्ट करें। मेरे ख्याल में ये बड़ा हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा और ये हिस्सा
जी बिल्कुल, और यही वो तहरीक है जो आपको मिली जब आपके अपनी बच्ची के पैर को आपने देखा और धचका लगा आपके दिल को, तो आपको मालूम हुआ कि दूसरे लोगों के, दूसरे वालदैन के दिलों को कैसे धचका लगता होगा जब उनको कोई ऐसा मर्ज हो जाए जिसके बारे में वो ये भी ना सोच सकें कि उसका इलाज मुमकिन है। तो डॉक्टर शमीम, मुनीरा शमीम साहिबा, आप क्या कहेंगी, कोई पैगाम दीजिए, एक मिनट है आपके पास।
मेरी बेटी ने पहला कदम उठाया, उसके साथ इंडस हॉस्पिटल ने पहला कदम उठाया। ये तो दिल का मामला है, जज्बा जुनून है, देखिए हमारा कारवां कहाँ आगे तक जाता है।
डॉक्टर मोहम्मद चिनॉय साहब, कुछ मैसेज आपका इस प्लेटफॉर्म से? डॉक्टर मोहम्मद चिनॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी जल्दी से।
ये कहना चाहूंगा कि ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो जब पेरेंट्स को पता लगता है तो वो अपने बच्चों को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल ले आए ताकि कहाँ इलाज कर सकें।
जो
डोनर भी सुन रहे हैं उनके लिए है कि आपके एक बहुत छोटी सी रकम किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो सोचें, इस तरफ सोचें, देर ना करें और आगे बढ़कर
आपके मिशन में शामिल हों। बेहद शुक्रिया डॉक्टर चिनॉय साहब। और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हरदम रवाया जिंदगी का आज का प्रोग्राम खत्म होता है। आज हमने बात की पाकिस्तान में मुड़े हुए पैरों के मुफ्त इलाज के एक प्रोजेक्ट पहला कदम के बारे में, जिसे शुरू किया पाकिस्तान के दो पाकिस्तानी अमरीकियों ने, यहाँ जो कैलिफोर्निया में मुकीम है, अपनी बच्ची को मुड़े हुए पैरों का इलाज करने के बाद ये तहरीक पाकर। हमारे साथ वो दोनों भी शरीक थे, आमिर हैदर साहब और उनके अहलिया मुनीरा शमीम, और हमारे साथ इंडस अस्पताल कराची के ट्रॉमा सेंटर के सरबरा प्रोफेसर मोहम्मद अमीन चुनाय मौजूद थे, और हमारे साथ पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर लुबना समद मौजूद थी, और हमारे साथ लाहौर के मनाब अस्पताल के आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद जीशान शामिल थे, और हमारे साथ उस बच्ची की दादी भी शरीक थी, आयशा साहिबा। ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام سمیٹتے ہیں. ہماری پروڈیوسر تھی سعدیہ اسد. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
افغان صدر اشرف غنی نے جنیوا میں افغانستان پر دو روزہ کانفرنس کے اختتام پر ایک 12 رکنی وفد کا اعلان کیا جو طالبان کے ساتھ بات چیت کرے گا. صدارتی محکمے کے سلام رحیمی اس ٹیم کی سربراہی کریں گے جس میں مرد اور خواتین بھی شامل ہوں گے اور جو طالبان کے ساتھ ایک جمہوری معاشرے کی تشکیل کے لیے گفتگو کا آغاز کریں گے. لیکن جمعرات کو طالبان نے اپنے ابتدائی رد عمل میں اس ٹیم سے بات چیت کرنے سے انکار کیا. پاکستان میں این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسف زئی اس کی وجوہات بتاتے ہیں.
افغان طالبان نے افغان گورنمنٹ سے بات چیت سے انکار کیا ہے. اس سے پہلے بھی کافی مواقع ایسے آئے ہیں جب امریکہ اور افغان طالبان کی بھی بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی تو خود امریکہ نے بھی طالبان سے کہا تھا کہ آپ افغان گورنمنٹ سے بات کریں. اور افغان گورنمنٹ افغان طالبان ہیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہیں کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ بے اختیار ہے. اس سے پہلے بھی کبھی ادوار ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں چند سال پہلے. لیکن جب ان کی ڈیمانڈ ان کے سامنے پیش کرتے تھے تو بقول طالبان کے وہ تھوڑا سا وقت مانگتے تھے, اور بقول طالبان کے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ امریکی جو ملٹری حکام ہے ان سے ڈسکس کریں گے, کیونکہ کچھ چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں, جس طرح قیدیوں کا تبادلہ اور فارن ٹروپس کا وڈرال. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ افغان گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہیں. جو کل طالبان نے بیان جاری کیا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے, اشرف غنی نے جو یہ ان کو آفر کی ہے فیس ٹاکس کی, تو ان کی بھی وجوہات انہوں نے وہی پرانی دہرائی ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے فیصلے کرنے کی. تو اس لیے اب چونکہ ان کی بات چیت چل پڑی ہے امریکی حکام کے ساتھ, تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ جو ان کی بات چیت ہے امریکی حکام کے ساتھ وہ جاری رہے.
یوسف زئی کا کہنا تھا کہ طالبان امریکہ اور روس سے براہ راست بات چیت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں.
میرے خیال میں جو ابھی ماسکو میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں مختلف ممالک کے نمائندے شریک تھے اور افغان طالبان کے بھی نمائندے شریک تھے, تو افغان طالبان اس کو اپنے لیے بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پہلی مرتبہ ایک انٹرنیشنل فورم ملا ہے خلیل آزاد کے ساتھ اور امریکی حکام تھے. تو اب افغان طالبان اس کو یقین ہو چکا ہے کہ امریکی حکومت چاہتی ہے کہ افغان مسئلے کا جلد از جلد کوئی حل نکل آئے, اور میرے خیال میں جو انہوں نے ابھی بات کی تھی تین دن تک جو ان کی ملاقات ہوئی تھی قطر میں, تو سب سے پہلے جو ان کی بات ہوئی تھی وہ کہ قیدیوں کی تبادلہ کی ہوئی تھی, اور امریکی حکام نے کافی انسسٹ کیا, افغان طالبان زور دیا کہ آپ 6 مہینے کا وڈرال 6 مہینے کا سیز فائر اناؤنس کریں, جنگ بندی کا اعلان کریں. طالبان نے ابھی انکار کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت نہیں ہے. اس لیے سر دست جو ان کی سب سے زیادہ جس بات کے اوپر انہوں نے زور دیا تھا وہ قیدیوں کا تبادلہ تھا, اور اس کے بعد جو کچھ طالبان رہنما ہے وہ بلیک لسٹ ہے, وہ کہیں جا نہیں سکتے. اس لیے طالبان نے ان کا بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کو بلیک لسٹ سے نکالا جائے. تو افغان طالبان کے جو چند لوگ تھے اس میٹنگ میں, خود انہوں نے بتایا تھا کہ امریکی حکام نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ یہ جو بلیک لسٹ ہے یہ ختم کی جائے گی اور آپ کے تمام ترکیب رہا کیے جائیں گے. البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہائی ویلو ٹارگیٹس ہیں, ان کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا.
یہ تھے پاکستان میں این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسف زئی. دوسری طرف کابل میں صحافی مریارے عباسین کا کہنا تھا کہ جنیوا میں افغانستان کی کانفرنس سے ان کے ملک کی بین الاقوامی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے.
انٹرنیشنل سوسائٹی ابھی بھی افغانستان کے حوالے سے کرپشن کے باوجود, بیڈ گورننس کے باوجود, افغانستان میں پور سیکیورٹی کنڈیشن کے باوجود انٹرنیشنل سوسائٹی یہ محسوس کر رہی ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ افغانستان ابھی بھی ایک ٹریک پر ہے, ہم آگے آ چکے ہیں, یہاں پہ اچیومنٹس بہت زیادہ ہے جس کے حوالے سے حساب کیا جا سکتا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں اس وقت نکالے گا جب حالات سازگار ہوں گے, لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ اس وقت طالبان کے ساتھ بات چیت کا عمل تیز ہو گیا ہے.
یو ایس فورسز افغانستان سے نکل رہی ہے, یہاں پہ کچھ کنڈیشن ابھی بھی آن دی گراؤنڈ ہے, کیونکہ ابھی واضح طور پہ معلوم نہیں ہے. جو باتیں قطر میں ہوئے یو ایس اور طالبان ریپرزینٹیٹو کے حوالے سے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو ابھی ایک کلیئر نہیں ہے, ایک فاگ موجود ہے پولیٹیکلی افغانستان کے حوالے سے. پر جو محسوس ہے وہ ایکسلریٹنگ پیس ٹاکس ہے جو افغانستان میں بہت شدت سے سامنے آ رہی ہے.
یہ تھے کابل میں سینئر صحافی مریارے عباسی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھار.